भारत की जनसंख्या नीति। भारत जहां औसत कुल उत्पादकता दर 3.1 बच्चे प्रति स्त्री थी, विश्व की विशाल जनसंख्या में सबसे बड़ा बढ़ावा देने वाला राष्ट्र है। जनसांख्यिकी संक्रमण जो इस राष्ट्र में वर्तमान सदी के प्रारंभ में शुरू हुआ, उसके पूर्ण होने के लक्षण अभी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। पश्चिमी राष्ट्रों में दशा इसके ठीक उल्टी है। वहां जनसांख्यिकीय संक्रमण का प्रारंभ हुआ तथा उसे पूर्ण होने में एक सदी का समय लगा, पर वह समय ऐसा था जब गिरजाघर या धार्मिक विचार के लोग उत्पादकता नियंत्रण के विरुद्ध थे। राज्य भी इस कार्य के प्रति उदासीन था। परिवार नियोजन की विधा या तो विकसित नहीं थी या अत्यंत सीमित थी, पर तीव्र गति से जनसांख्यिकीय संक्रमण की प्रक्रिया एक हाल की घटना है, जिसमें जापान, पूर्वी यूरोप के राष्ट्र और चीन आते हैं। इन राष्ट्रों में जन्म और मृत्यु दर की गिरावट में बहुत कम समय लगा है। इस कारण जनसांख्यिकीय संक्रमण की प्रक्रिया में तेजी आई है। भारत में जनसांख्यिकीय दृश्य के निर्धारण में मृत्यु दर की प्रमुख भूमिका है, परंतु जन्म दर में आशा के अनुरूप गिरावट नहीं आ रही है। फलतः देश में लंबी अवधि तक विस्फोटक गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। भारत एक विशाल देश है, जहां विशाल क्षेत्रीय एवं संरचनात्मक असमताएं हैं। देश में सामाजिक आर्थिक विषमताएं विशाल हैं। इस कारण इसके जनसांख्यिकीय प्रारूप में महान विविधता है। एक ओर गोवा राज्य, जहां जन्म और मृत्यु दर क्रमशः 15.5 और 7.8 है, जनसंख्या संक्रमण के अंतिम चरण में पदार्पण कर रहा है, पर दूसरी ओर उत्तर प्रदेश, जहां जन्म और मृत्यु दर क्रमशः 37.0 और 12.6 है, इस दृष्टि से अभी बहुत पीछे है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के विशाल क्षेत्र और विशाल जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार अभी भी जनसंख्या वृद्धि की विस्फोटक अवस्था में है। न केवल उनमें जन्मदर में गिरावट ही कम रही, वरन मृत्यु दर की गिरावट की लड़ाई भी अभी तक सफल नहीं हो पाई है। यद्यपि भारत प्रथम विकासशील राष्ट्र है जिसने सन 1951-52 में एक सकारात्मक जनसंख्या नीति का प्रतिपादन किया, फिर भी जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में उसकी उपलब्धि संतोषजनक नहीं है। स्वतंत्रता के पूर्व 3 दशकों में भारतीय औसत जनसंख्या वृद्धि दर 1.3% थी, जो 1961-71 के दशक में 2.25% वार्षिक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। हाल के अनुमानों में उसमें कुछ गिरावट परिलक्षित हुई है। ऐसा अनुमान है कि सन 1980-84 में औसत वृद्धि दर 1.99% वार्षिक रही है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह धारणा थी कि जनसंख्या वृद्धि प्रवृत्ति को अल्पकाल में परिवर्तित करना कठिन है, क्योंकि जन्म दर में आई कमी को मृत्यु दर में हुई गिरावट निष्क्रिय कर देगी। इस कारण योजना के अंतर्गत परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण पर विशेष बल दिया गया। इसमें पहला, भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देने वाले घटकों की व्याख्या, दूसरा, परिवार नियोजन उपकरणों तथा परिवार नियोजन चेतना के प्रसार हेतु उपयुक्त विधा की शोध, तीसरा, सार्वजनिक एजेंसी तथा राजकीय अस्पतालों एवं चिकित्सा केंद्रों पर परिवार नियोजन सेवाओं को उपलब्ध कराने पर बल दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रथम पंचवर्षीय की जनसंख्या नीति से कोई विशेष अंतर नहीं आया। मात्र सन 1956 में स्वेच्छापूर्वक नसबंदी का प्रावधान किया गया, पर परिवार नियोजन पर व्यय की मात्रा बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी गई, जिसमें 2.3 करोड़ रुपए संपूर्ण देश में 1469 परिवार नियोजन केंद्रों को खोलने पर खर्च किए गए। द्वितीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम में कुछ वृद्धि अवश्य हुई। जनसंख्या वृद्धि समस्या का अद्भुत रूप सन 1961 की जनगणना में सामने आया, जब वृद्धि दर हर अनुमानों को पछाड़कर आगे बढ़ गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना के गठनकर्ताओं ने बहुत स्पष्ट रूप से जनसंख्या नीति की घोषणा की, एक समुचित अवधि में जनसंख्या वृद्धि में स्थिरता लाना नियोजित विकास का केंद्र बिंदु होना चाहिए। इस कारण परिवार नियोजन कार्यक्रम, जिसमें शिक्षा तथा भारी मात्रा में परिवार नियोजन उपकरणों तथा सेवाओं का ग्रामीण और नगरीय समुदायों में प्रसार हो, भारी महत्व रखते हैं। इस विचार के कारण जनसंख्या नीति में भारी परिवर्तन आया और पहले की औषधि उपगमन क्लिनिकल अप्रोच के स्थान पर शिक्षा प्रसार उपगमन पर बल दिया गया, जिसके द्वारा सुदूर क्षेत्र में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के जाल विस्तार द्वारा परिवार नियोजन संदेश एवं सेवाओं को पहुंचाने पर बल दिया गया। जनसंख्या नीति चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अत्यधिक सकारात्मक हुई और परिवार नियोजन योजना की मुख्य बिंदु बन गई। छोटा परिवार विकास का अपरिहार्य लक्षण माना जाने लगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या नीति का सबसे मुख्य लक्षण यह था कि जन्म दर को 39 व्यक्ति प्रति हजार से सन 1978-79 तक 23 व्यक्ति प्रति हजार तक लाने का समयबद्ध लक्ष्य रखा गया। अल्प तथा दीर्घकालीन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु केंद्र से लेकर परिधि तक के क्षेत्रों में वर्तमान दवा एवं सुविधा संगठनों का निर्माण किया गया, जिसमें पुनर्जनन आयु वर्ग के सभी दंपतियों को समाहित किया गया। परिवार नियोजन पर व्यय की मात्रा बढ़ाकर 286 करोड़ कर दी गई, जो तृतीय योजना के इस पर व्यय का 12 गुने थे। फलतः चतुर्थ योजना के अंत तक 87 लाख दंपतियों की नसबंदी की गई और 60 लाख दंपतियों को परिवार नियोजन के अन्य उपकरणों उपलब्ध कराए गए। इस प्रकार अनुमानतः 69 लाख बच्चों के जन्म को स्थगित किया गया, जबकि तृतीय पंचवर्ष योजना काल में यह संख्या मात्र 6 लाख बच्चे थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना अवधि में परिवार नियोजन पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए और परिवार नियोजन कार्यक्रमों में एक आधारभूत परिवर्तन लाया गया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत परिवार नियोजन तथा जन कल्याण सेवा को एक निश्चित सेवा को एक में समन्वित कर दिया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अधिकांश सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, परिवार नियोजन, बाल आहार एवं मातृत्व पोषण को रखा गया। जनसंख्या नीति में इस योजना में आवश्यक परिवार नियोजन, आर्थिक उद्दीपन एवं दंड प्रावधान, गर्भपात वैधता आदि नवीन आयाम संयुक्त किए गए। छठी योजना में देश के सामाजिक आर्थिक विकास में परिवार नियोजन की प्राथमिकता यथावत बनी रही। इस योजना में स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं पोषण सेवाओं को एक में समन्वित किया गया। स्वेच्छापूर्ण नसबंदी हेतु दी जाने वाली आर्थिक सहायता दर में वृद्धि की गई तथा परिवार कल्याण हेतु दिए जाने वाले चंदों पर पूर्ण आयकर छूट प्रदान करने की राजकीय अनुज्ञा हुई। छठी पंचवर्षीय योजना के अंत तक जन्म दर घटाकर 30 प्रति हजार लाने का लक्ष्य रखा गया। इसकी प्राप्ति हेतु प्रजनन आयु वर्ग के 36% दंपतियों को परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत समाहित करने का उद्देश्य बनाया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। जनसंख्या के विभिन्न क्षेत्रों में लक्ष्य स्थापित करने का विस्तार हुआ। साथ ही परिवार नियोजन कार्यक्रमों को अधिक प्रभावशाली बनाने का प्रयास प्रारंभ हुआ। सन 1985-90 में निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। पहला, स्त्रियों की विवाह आयु सीमा 20 वर्ष करना। दूसरा, हम दो हमारे दो नामक परिवार। तीसरा, लक्ष्य दंपत्ति में 42% को विभिन्न प्रकार की गर्भ निरोधक सुविधाओं द्वारा उपलब्ध कराना। चौथा, सभी गर्भवती महिलाओं तथा शिशुओं को टीकाकरण में समाहित कर शिशु मृत्यु दर को 90 प्रति 1000 के स्तर पर लाना, जिससे शिशु जीवन संभाव्यता में वृद्धि हो सके। पांचवा, अपरिष्कृत जन्म और मृत्यु दर क्रमशः 29.1 और 10.4 प्रति 1000 तक लाना। विभिन्न प्रकार के सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों की सहायता से एक ऐसा वातावरण निर्मित करना जिसमें उत्पादकता को नियंत्रित किया जा सके। सातवां, स्त्रियों की साक्षरता और उनके कार्य के अवसरों में सुधार करना। आठवां, 11 से 15 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को जनसंख्या शिक्षा प्रदान करना और जो विद्यालय में नहीं पढ़ते उन तक यह शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा या अन्य माध्यमों से पहुंचाना। इन सब की प्राप्ति जनता की सहभागिता से ही होना निश्चित किया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना के शोध का मुख्य बिंदु परिवार नियोजन की उस तकनीक को रखा गया जिसे लोग स्वीकार कर सके। किसी देश की जनसंख्या नीति मात्र जन्म दर नियंत्रण तक ही सीमित नहीं रह सकती, उसमें देश के सर्वव्यापक सामाजिक आर्थिक एवं जनसांख्यिकी तंतुओं के सुधार को भी समाहित करना होगा। इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि दर नियंत्रण, प्रजनन आयु वर्ग की जनसंख्या को सीमित करना, स्त्रियों और पुरुषों की रोजगार संभाव्यता में वृद्धि, अर्थव्यवस्था का विभेदन, शिक्षा एवं साक्षरता स्तर में सुधार, स्त्री पुरुषों के अनुपात में संतुलन आदि हमारी जनसंख्या नीति के मुख्य आयाम होने चाहिए। परिवार नियोजन अथवा परिवार कल्याण के दो प्रमुख उपगमन हैं। पहला, दीर्घकालीन उपाय जिसमें सामाजिक आर्थिक एवं जनसांख्यिकीय संरचना में सुधार आता है, और दूसरा अल्पकालीन उपाय जिसमें शीघ्र अतिशीघ्र जन्मता को रोककर प्रतिफल प्राप्त करना। दीर्घकालीन उपाय में जनसंख्या शिक्षा, विवाह आयु में वृद्धि, शिशु मजदूरी पर रोक, अनिवार्य प्रौढ़ शिक्षा, लघु परिवारों पर मातृत्व सुविधाओं में वृद्धि, वृद्धावस्था में सुरक्षा आपूर्ति, नवीन जीवन बीमा नीति का प्रारंभ, लघु परिवार वालों को विशिष्ट सुविधाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर आधारित लघु उद्योगों की स्थापना द्वारा स्थल प्रारूप की पुनः संरचना तथा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की जनशक्ति का उपयोग, तीव्र नगरी एवं औद्योगिक विकास की सहायता से अर्थव्यवस्था का विभेदीकरण और स्त्रियों के लिए सुंदर स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रोजगार सुविधा की उपलब्धि आदि सम्मिलित है। इसके विपरीत जन्म दर को तुरंत कम करने के लिए अल्पकालीन उपायों में परिवार नियोजन के कृत्रिम उपकरण, स्वेच्छापूर्वक अथवा आवश्यक नसबंदी, दूसरे या तीसरे शिशु जन्म के पश्चात गर्भपात, छोटे या बड़े परिवार हेतु सामाजिक आर्थिक पुरस्कार और दंड की व्यवस्था आदि है। जब तक नौकरशाही व्यवस्था ऊपर से थोपी जाती रहेगी तब तक परिवार नियोजन की कोई भी अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन व्यवस्था सफल नहीं हो सकती। जन सामान्य किसी भी व्यवस्था को तभी अंगीकार करेगा जब वह उसकी सामान्य वृद्धि सम्मत होगी। यदि एक बार ऐसा हो जाएगा तो वह स्वतः उद्भूत व्यवस्था होगी। जनसंख्या नीति की सफलता इस पर आधारित है कि उसे स्वतः उद्भूत व्यवस्था कैसे बनाया जाए। नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सन 2000। सन 2000 में भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय जनसंख्या नीति देश के स्वतंत्रता उपरांत इतिहास में जनसंख्या समस्या समाधान से संबंधित अब तक का सर्वश्रेष्ठ व विस्तृत अभिलेख है। इसमें पहली बार जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने की रणनीति की परिधि में गर्भ निरोधक तरीकों के अतिरिक्त शिशु स्वास्थ्य, गर्भवतियों के स्वास्थ्य, स्त्रियों के व्यवसाय व उनके अधिकार जैसे मसलों की ओर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस बार भी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति ने अपने लिए स्पष्ट तौर पर तीन प्रकार के लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिन्हें तुरंत, मध्यकालीन या दीर्घकालीन अथवा दूरगामी लक्ष्यों की संज्ञा दी गई है। देश के हर नागरिक को हर प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, विशेषकर शिशुओं, नवजात शिशुओं को तथा गर्भवती महिलाओं को तथा हर प्रकार की गर्भ निरोधक सुविधाओं को घर घर तक पहुंचाना आदि इस नीति का सर्वप्रथम लक्ष्य है, जिसे तुरंत प्राप्त करने के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। इस नीति का मध्यकालीन लक्ष्य है कि देश की कुल उत्पादकता दर को शीघ्र अतिशीघ्र 2.1 के स्तर तक लाना है। नीति का दीर्घकालीन लक्ष्य सन 2045 तक देश की जनसंख्या को अस्थायी बनाना है। इस प्रकार के तुरंत, मध्यकालीन व दीर्घकालीन लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए जो रणनीति बनाई गई है वे इस प्रकार हैं। पहला, सन 2010 तक प्रत्येक गांव, नगर आदि में शिशु स्वास्थ्य, नवजात शिशु स्वास्थ्य, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी सभी मौलिक स्वास्थ्य सुविधाएं व सेवाएं उपलब्ध कराना। दूसरा, 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान कराना। तीसरा, ऐसे बच्चों जो स्कूल में प्रवेश लेने के बाद किसी कारण पढ़ाई छोड़ने पर बाध्य हो जाते हैं के अनुपात को 20% से नीचे लाना, विशेषकर लड़कियों में। चौथा, ऐसे उपाय करना जिससे किसी भी लड़की की शादी 18 वर्ष से कम आयु में न की जा सके और यदि हो सके तो 20 वर्ष से पहले किसी कन्या का विवाह न हो पाए। पांचवा, जन्मता से संबंधित सब प्रकार की सूचना व सलाह सभी को उपलब्ध कराना। छठा, कम से कम 80% जनन को चिकित्सालयों की परिधि में संपन्न कराना तथा बाकी के 20% जनन की भी प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों से कराना। सातवां, ऐसे सभी क्षय रोग जिनकी रोकथाम के लिए टीके उपलब्ध कराए जा चुके हैं के टीके सभी नवजात शिशुओं व शिशुओं तक पहुंचाना। आठवां, ऐसी व्यवस्था करना कि प्रत्येक जन्म, मृत्यु, गर्भ विवाह को पंजीकृत किया जा सके। नौवां, सभी संचरणीय रोगों के उपचार उपलब्ध कराना तथा इन्हें फैलने से रोकना। दसवां, शिशु मृत्यु दर जो कि इस समय 70 प्रति 1000 है को 30 प्रति 1000 तक घटाना। ग्यारहवां, एड्स जैसे भयानक रोग की रोकथाम के लिए सभी प्रयास करना। बारहवां, गर्भ संबंधित महिला मृत्यु दर को 100 प्रति 1,000,000 से निम्न लाना। तेरहवां, कुल उत्पादकता दर को 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर तक लाना। चौदहवां, महिलाओं के प्रजनात्मक स्वास्थ्य व शिशुओं के स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को उपलब्ध कराने में होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी व अन्य भारतीय स्वास्थ्य प्रणालियों को भी एलोपैथी जैसी प्रणाली के साथ प्रयोग में लाना तथा पंद्रहवां, वे सभी प्रयत्न करना जिससे जनसंख्या पर अंकुश लगाना एक सरकारी कार्यक्रम न रहकर स्वजनित जनता का आंदोलन बन जाए। हालांकि भारत पहला विकासशील देश था जिसने 50 वर्ष पूर्व सन 1951-52 में भी अपनी जनसंख्या नीति घोषित कर जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने का लक्ष्य बना लिया था, परंतु फिर भी इस क्षेत्र में देश के पिछले 50 वर्षों की उपलब्धि बहुत सराहनीय नहीं बन पाई। भारत की जनसंख्या के संदर्भ में संपूर्ण परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सन 2000 में घोषित राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में देश की जनसंख्या को सन 2045 तक स्थायी बनाने हेतु एक सुनिश्चित रणनीति तैयार की है, जिसके मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। नीति निर्धारण व पालन दोनों देशों का विकेंद्रीकरण करना। दूसरा, स्वास्थ्य एवं प्रजनन संबंधित सभी प्रकार की सेवाएं प्रत्येक गांव में उपलब्ध कराना। तीसरा, महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करना। चौथा, नवजात शिशु व अन्य शिशुओं में मृत्युता को निम्न से निम्न बनाना। पांचवा, झुग्गी झोपड़ियों निवासियों, अनुसूचित जनजाति, किशोर आयु वर्ग आदि के लोगों तक उन सभी सुविधाओं व सेवाओं को पहुंचाना, जिससे जन्म दर पर अंकुश लगाया जा सके। छठा, सरकारी गैर सरकारी व सहकारी क्षेत्रों की भी कि सभी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाओं को उस प्रयास में समाहित करना। छठवां, प्रजनात्मक स्वास्थ्य, नवजात शिशु स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में हर प्रकार की भारतीय चिकित्सा तंत्र को प्रयोग में लाना। आठवां, स्वास्थ्य व प्रजनन सेवाओं के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का नवीकरण करना। नौवां, बुजुर्गों की देखरेख का ध्यान रखना। दसवां, प्रजनन संबंधित सूचना के सही प्रसारण करना। सन 2000 की नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में जन कल्याण व परिवार कल्याण अभियान में इस बात पर भी विशेष बल देने को कहा गया है कि सभी प्रकार की सही सूचना घर घर पहुंचाई जाए तथा जो गलत धारणाएं हैं उनके विसरण को रोका जाए। जहां तक हो सके सभी साहित्य व संदेश आदि स्थानीय भाषा में हों और उन्हें संगठनों के माध्यम से सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। अतः सन 2000 की राष्ट्र की नई जनसंख्या नीति के 10 सिद्धांत सुनिश्चित किए गए, जो निम्नलिखित हैं। पहला, योजना बनाने से लेकर उन्हें क्रियान्वित करने तक की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण। दूसरा, प्रत्येक गांव में प्रजनन संबंधी सभी प्रकार की सेवाएं व सुविधाएं उपलब्ध कराना। तीसरा, ऐसे सभी दंपतियां जो अब तक परिवार नियोजन सुविधाओं से वंचित रह गई हैं, उन सबको गर्भ निरोधक उपकरण उपलब्ध कराना। चौथा, महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करना। पांचवा, शिशु मृत्यु दर को निम्नतम स्तर पर लाना। छठा, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति, किशोर आयु वर्ग आदि के लोगों को उस क्षेत्र की आवश्यकताओं की ओर अधिक ध्यान देना। सातवां, स्वास्थ्य व चिकित्सा के क्षेत्रों में गैर सरकारी सेवाओं का लाभ उठाना तथा एलोपैथी के साथ साथ सभी औषधि व स्वास्थ्य प्रणालियों को इस अभियान में समाहित करना। नौवां, स्वास्थ्य परिवार नियोजन के क्षेत्रों में अनुसंधान के माध्यम से प्रौद्योगिकी को विकसित करना। दसवां, परिवार नियोजन के बारे में गलत धारणाओं का खंडन करते हुए सही सूचना को घर घर तक पहुंचाना व वृद्धजनों की देखरेख सुनिश्चित करना।